سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف حاصل ہو، نصیب ہو. درود بھیجے گا محمد والے محمد. قرآن کریم میں اور روایات اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اندر مقصد حیات کے حوالے سے کئی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں. بعض اوقات میں احساس ہوتا ہے جیسے ان تعبیرات میں فرق ہے، ان تعبیرات میں معانی مفاہیم مختلف ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا تجزیہ کیا جائے تو دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں ایک خاص مفہوم کی سمت پڑھ رہی ہوتی ہیں اور اس کے مختلف درجات کو بیان کر رہی ہوتی ہیں. مثلا کہیں پر لکھا ہے کہ آیہ کریمہ میں جیسے کہ ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کرے. پھر کہیں آپ اپنی عبادات کے اندر دیکھتے ہیں تو عبادات کے اندر مسلسل ایک نیت چلتی چلی آ رہی ہے اور وہ ہے قربتاً الی اللہ. آیہ کریمہ فرماتی ہے کہ ہم نے اس سے خلق کیا کہ عبادت کریں، اور ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ قرب خدا حاصل ہو. سورہ شمس کے اندر دیکھتے ہیں تو اس نے فرمایا: قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا. تو انسان بعض اوقات سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے، آیا عبادت، تزکیہ نفس، قرب الہی. اور اگر سورہ بقرہ میں دیکھیں تو اللہ خدا نے فرماتا ہے: انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنا جانشین بنا رہا ہوں. تو سوچنے لگتا ہے شاید یہ چار علیحدہ موضوعات ہیں: عبادت، قرب، تزکیہ نفس اور خلافت خداوند متعال. لیکن اگر تھوڑا سا تجزیہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ان چاروں ایک ہی مفہوم ہیں، ان چاروں کی بازگشت ایک ہی مفہوم کے اوپر ہے. پھر ان مفاہیم کی بھی ایک اساس ہے، تو اگر کوئی اس اساس کو پورا کر لے تو یہ چاروں مفاہیم پورے ہو جاتے ہیں: تزکیہ نفس بھی، قرب خدا بھی، خلافت الہیہ بھی اور عبادت رب ذوالجلال بھی. اس ان چار مفاہیم کو تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں، اس بنیاد اور اساس کو بیان کرتے ہیں، پھر ماہ رمضان میں اس اساس سے ہم کے لیے ہمیں کیا مدد ملتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہاں پر اس نقطے کی مقرر تشریح ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہو جاتی ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتی. مشہور بہت زیادہ ہیں لیکن معلوم نہیں ہے، لوگوں کو ابھی بھی واضح نہیں پتہ کہ ان کا مطلب کیا ہوا. مثلا میرا گمان یہ ہے کہ شاید ہمیں نہیں معلوم کہ استغفار کسے کہتے ہیں، میرا نہیں خیال. یعنی ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ خدا نے تعالیٰ کے حضور مغفرت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے. سر یعنی ہماری انڈرسٹینڈنگ کچھ ایسی ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ فلاں مجرم کو 6 مہینے قید دے دی جائے، اس کے بعد مغفرت یہ ہے کہ اس سے وہ قید کینسل کروا لو کسی طریقے سے. آیا مغفرت خدا نے مطلب یہی ہے کہ مثلا ایک گناہ سرزد ہوا، اس پہ حاکم نے ایک قید کی سزا دے دی، آپ نے کہا بھائی کچھ جتن کرو کسی طریقے سے قید کی سزا نکلوا لو. اچھا، اس قید کی سزا نکلنے میں کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اب یہ چوری کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ نہیں ہے. مثلاً فرض کیجئے آپ کے پاس آج کے زمانے میں بھی فرض کیجئے آپ کے اوپر پابندی لگی کہ آپ حکومت کے کسی منصب کو نہیں دے سکتے، پھر ایک قانون بنا اور وہ پابندی ختم ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو جرم تھا اس جرم کے اسباب بھی ختم ہو گئے، नहीं, मुजरिम में कोई तब्दीली नहीं आई है, सजा तब्दील हुई है। आया खुदा का निज़ाम भी यही है, यानी सजा तो कब तब्दील होनी चाहिए थी? सजा उस वक्त तब्दील होनी चाहिए थी जब मुजरिम में कोई तब्दीली आई हो। मसलन मुजरिम आया चोरी की सज़ा की वजह से, उसको सज़ा देने लगे, अचानक पता चला कि पहले चोरी की थी या नहीं की थी, अब आइंदा के लिए कभी चोरी नहीं करेगा, मुजरिम में एक तब्दीली आ गई। जैसे मुजरिम में तब्दीली आई, अगला सवाल ये उठा कि वो जो हम जुर्म को रोकने के लिए सज़ा दे रहे थे, अब सज़ा दें या ना दें? तो यहाँ ये मंतिक बनती है कि नहीं, सज़ा मत दो। क्यों? चूँकि आप सज़ा दे रहे थे जुर्म रोकने के लिए और मुजरिम तर्क जुर्म के ऊपर तैयार हो चुका है, अब सज़ा देनी या नहीं देनी ये अब आपका फैसला है। अच्छा, हमारे निज़ाम में ऐसा नहीं हो रहा। हमारे निज़ाम में जुर्म हो रहा है, मुजरिम में खराबी जाहिर हो रही है, उस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, फिर वो सज़ा बरतरफ हो जाती है, जुर्म भी अपनी जगह बाकी है, मुजरिम की खराबी भी अपनी जगह पर बाकी है। आया मगफरत भी यही है? आया मगफरत सज़ाओं का राइट ऑफ हो जाना है, जैसे हमारे निज़ाम के अंदर सज़ाएँ राइट ऑफ हो जाती हैं? ये है, ज़ाहिरन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ये नहीं होना चाहिए तो फिर इस्तग़फ़ार क्या है? आप आज की शब तशरीह फरमा हुए, मसलन नमाज शब में रकअत वित्र के अंदर आपने हाथ उठाया, अलआफ़ अलआफ़ अलआफ़, और मामला ख़त्म हो गया, सारी जुर्म की सज़ाएँ सब ख़त्म हो गई। आया ये मगफरत इलाहिया है? मसलन मैं कहीं पर बैठा, मैं 70 दफ़ा का अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तूब इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तूब इलैह, 70 दफ़ा का मेरी सज़ाएँ ख़त्म हो गई। आया इस्तग़फ़ार ये है? हम सब का जहन फौरन कह रहे हैं कि इस्तग़फ़ार को ये नहीं होना चाहिए। तो इस्तग़फ़ार क्या होना चाहिए? इस्तग़फ़ार ये होना चाहिए कि मैंने जुर्म किया, उस जुर्म के नतीजे में मेरे अंदर एक कमी हासिल हुई है। सज़ा बात की बात है, सज़ा क़यामत के दिन देगा, इस जुर्म के नतीजे में मेरे अंदर एक कमी आई है। अब मैं खुदा नमदार से क्या कह रहा हूँ? खुदा, मैंने जो जुर्म किया था उसके नतीजे में मेरे अंदर एक कमी आई है, मैं उस जुर्म से तेरी पनाह मांगता हूँ ताकि वो जो कमी मेरे अंदर आई है तू उस कमी को बरतरफ कर दे। इसकी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन तवानाई कम नहीं होनी चाहिए, इंसान के अंदर जोश जज्बा ज़्यादा होना चाहिए। आप इतना धीमे और इतना सुस्त अंदाज में जब दुरूद भेजेंगे तो मेरा दिल चाहता है मैं भी उतना ही धीमा और सुस्त तरीन अंदाज में मजलिस पढ़ूं। जो पढ़ने वाले हैं उनको शोर मचाने की आदत होती है तो पब्लिक को भी चाहते हैं कि शोर मचाएं, नहीं मसला ये नहीं है। मसला शोर मचाने का नहीं, मसला ये है कि सामईन में जज्बा कितना है, सामईन में आया तलब है या नहीं है, आया सामईन के अंदर इस बात की कशिश है या नहीं कि वो अमल करेंगे, इसको सुनेंगे अमल करेंगे। और अलबत्ता एक तरफ से ये होना चाहिए कि शायद कहने वालों को इसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कि सामईन अमल करेंगे या नहीं करेंगे, उसको अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हम लोग इंसान हैं, बहरहाल हम लोग इंसान हैं, इंसान के ऊपर दूसरे इंसान बहरहाल असरअंदाज हो जाते हैं और इस बात का असर पड़ जाता है कि सामने वाले अमल करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी कोई पाकिस्तान से बाहर से कहीं आए और एक बहन तशरीफ लाई, उन्होंने कहा कि आपने कहीं मजलिस में कहा था कि पता नहीं लोगों पर असर होता है या नहीं होता, तो कहेंगे मेरा दिल चाहता था कि आपसे आकर कहूँ कि होता है, आप इसकी परवाह नहीं करेंगे, नहीं होता, होता है, कम तो होता होगा। तो असर यदि इस्तग़फ़ार किसे कहते हैं, मग़फ़िरत क्या है? मग़फ़िरत इस तरह से यूँ तसव्वुर करते हैं, जैसे एक आदमी आया, उसने फ़र्ज़ कर दीजिए एक मुल्क के अंदर जहर का इस्तेमाल मना है, हमारे मुल्क में भी मना है, आप अपनी ज़ात के ऊपर जहर इस्तेमाल नहीं कर सकते कानून जुर्म है, ख़ुदकुशी के ज़ुमरे में आएगा। तो फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ने जहर को इस्तेमाल कर डाला, जहर इस्तेमाल किया कानून, उसने जुर्म कर दिया, अब कानून जुर्म हुआ और उसको पुलिस ने पकड़ना है, अचानक ऊपर से हुक्म आया और कहा कि इसको इस जुर्म की सज़ा नहीं देनी, जुर्म की सज़ा नहीं देनी। अच्छा, अब सवाल, जुर्म की सज़ा ख़त्म हो गई, जहर का असर बाकी है या ख़त्म हो गया? वो बाकी है अभी, वो मुश्किल अभी बाकी है। आपकी मग़फ़िरत वो है जो असर ख़त्म करवा दे, जुर्म की सज़ा ख़त्म ना करवाए, असर भी तो ख़त्म करवाए। आपने जहर खाने की सजा खत्म करवा ली, अब आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ रही, लेकिन मसला ये कि जहर तो खा लिया गया है, वो तो जिस्म के अंदर चला गया है, उसका असर नहीं होगा। कानून सजा दे या ना दे, जहर तो असर करेगा। एक आदमी ने नाऊज़ बिल्लाह ताला झूठ बोल दिया है, झूठ बोलने के बाद खुदा से इस्तग़फ़ार कर रहा है, इस्तग़फ़ार किस बात की कर रहा है, ए खुदा मुझे जहन्नम में ना डाल, ये क्यों नहीं सोचता जो तूने जहर खाया इसका क्या होगा। अगर खुदा के निज़ाम में झूठ का असर सिर्फ आखरत में होता तो शायद बात बन जाती, लेकिन इस दुनिया में तो है। अच्छा, इस दुनिया में कहाँ है? आपके अपने वजूद पर, आपके अपने मुस्तकबिल पर, आपके अपने हाल पर, आपके लोगों के साथ रिश्तों पर, सब पर असर है। जहर का असर सिर्फ बदन पे है, लेकिन गुनाह की तासीर हर चीज पर है। मसलन आपका मुस्तकबिल मुतासर होगा, वो जो क़यामत के दिन मुस्तकबिल आना था वो मुतासर होगा। ये जो आपका बरज़खी वजूद है, आपकी रूह है, ये मुतासर हो गई, इसके ऊपर उस झूठ का प्रिंट पड़ गया है। अगर खुदा ना करे इस्तग़फ़ार के बगैर क़यामत के दिन मैदान हश्र में पहुंचे, शक्ल देखते ही लोग पहचान लेंगे इसने झूठ बोला है, रूह के ऊपर प्रिंट बाकी है। फिर तो उस झूठ के नतीजे में आपके और बंदों के रबते, ऐसे रबते जिनके ऊपर मानवी कवानीन हुक्म कर रहे थे, वो ख़राब हो जाएंगे। मानवी कवानीन जो रबतों के ऊपर हुकूमत करते हैं, जो मेरे और आपके रबते हैं, इनके अंदर कुछ चीज़ें मादी कवानीन के तहत तय होती हैं, कुछ चीज़ें मानवी कवानीन के तहत तय होती हैं। आप आजुल्ला बहजत को नहीं देखते लेकिन उनको कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, ये मानवीय कानून है, इसमें मादियात की कोई दखलत नहीं है। शायद किसी कैमरे ने उनकी तस्वीर भी आपको ना दिखाई हो, फिर भी शायद आप पसंद कर रहे हैं, ये मानवीय कानून के तहत हो रहा है। वो तमाम रबते ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। आपके वजूद के अंदर अल्लाह के ऊपर एतमाद कितना था, कम था या ज़्यादा, अब शायद कम हो जाए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक झूठ बोला है, एक गुनाह हुआ। अच्छा, अब हम लोग अपने इस्तग़फ़ार के अंदर ज़्यादा ज़्यादा क्या देखते हैं? वो जो क़यामत में सज़ा मिलनी है वो ख़त्म हो जाए, बाकी का क्या होगा, इसको कैसे सही करेंगे? अच्छा, अब इसको सही कैसे कर सकते हैं? फिर जहर वाली मिसाल पे आते हैं। आप खुदा ना करे किसने जहर खाया, उसने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एक अच्छा वकील लिया और उस वकील ने कुछ इस तरह से नक्शा बनाया कि उसको जुर्म की सज़ा नहीं मिलेगी। अच्छा, अब सवाल ये कि वो जो जहर खाया इसका क्या होगा? इसका बिल्कुल इस तरह करना पड़ेगा कि या तो जिस्म से पूरा जहर दोबारा निकले, निकाल दिया जाए, जहर निकाल दिया जाए, या जिस्म के अंदर कोई ऐसी चीज डाली जाए जो उस जहर को बेअसर करे। आप यही करते हैं ना, आप एक आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो केमिकल्स हैं, आप उन केमिकल्स की खराबी की वजह से बीमार हो जाते हैं और उन केमिकल्स की खराबी की तरमीम आप दोबारा केमिकल्स के जरिए करते हैं। आप जो टैबलेट्स खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, सब केमिकल्स हैं और तो कुछ नहीं है। तो आपकी बॉडी केमिकल्स के बिगड़ने से बिगड़ती है और केमिकल्स ही के डलने से सही भी होती है। आप गुनाह की तासीर कैसे ख़त्म करेंगे? अगर गुनाह कर डाला है, आपने एक इस्तग़फ़ार तलब की, खुदा क़यामत के दिन मुझे सज़ा ना दे, चलिए मामला ख़त्म हो गया, सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन वो जो जिस्म पे असर है, रूह पर असर है, रबतों पे असर है, वो तो सब होगा। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो आप उस गुनाह की जगह इतना बड़ा कोई सवाब लेकर आए कि वो गुनाह बेअसर हो जाए, या उस गुनाह को जड़ से उखेड़ दें। जड़ से उखेड़ने का क्या मतलब है? इसको हम कहते हैं तलाफी करें, जुबरान करें। अगर किसी की गीबत की है तो जिस शख्स की गीबत की है उससे माफ़ी मांगे, कुछ करें। खुदा ना करे अगर माल गस्ब किया है, ये अजीब है, बाज़ औक़ात हमारे किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में काम करने वाले एक दोस्त ने कहा, कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सही क्यों नहीं है। वो क्या है, कहने लगे कि 58 साल की उम्र तक खूब गुनाह करते हैं, रिश्वतें लेते हैं, बंदों को तंग करते हैं, 58वें साल में हज करते हैं, बाकी 2 साल परहेजगारी में गुजार के कहते हैं कि अल्लाह ने बख्श दिया सबको। 58 साल की उम्र तक जुर्म करते हैं, रिश्वतें लेते हैं, सब काम करते हैं, 58वें साल में हज करते हैं, 2 साल बाकी के टोपी लगा के परहेजगारी में गुजार देते हैं और कहते हैं हम परहेजगारी पर रिटायर्ड हो गए। कहने का मुझे पता है ये गलत है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा इसमें गलत हिस्सा कौन सा है, इसमें गलत हिस्सा कौन सा है। अगर ये 58वें साल में जुर्म से तोबा मांगे और 58 साल तक जितना कुछ गलत किया था उस सब का जुबरान करे, तब तोबा सही है, तब तोबा सही है। तो जितना रिश्वत से माल दिया था सब वापस दे, नहीं वापस दे सकता तो अल्लाह के राह में सदका करे। जितना भी माल हराम की माल इसके अपने माल में आमजिश हुई है, मिलावट हुई है, उस सबको बरतरफ करे, उसके बाद जाकर सच्चे दिल से खुदा तआला के सामने इस्तग़फ़ार कर ले, फिर सही है। लेकिन अभी उसी घर में बैठा है जो हराम माल से बनाया है, फिर सही है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे जहर का कानूनी जुर्म इसने हटा लिया है लेकिन जहर बॉडी के अंदर बाकी है, मरना तो होगा, जहर तो है। आपकी इस्तग़फ़ार इतनी, आपके हमारी इस्तग़फ़ार क्या होनी चाहिए? हमारी और आपकी इस्तग़फ़ार ऐसी इस्तग़फ़ार होनी चाहिए जो गुनाह के तमाम तर असरात को मेरे और आपके वजूद से निकालते। मसलन अगर एक जवान और हत्ता क्या बूढ़ा क्या अगर कोई इस बात पे इस्तग़फ़ार कर रहा है कि खुदाया मैंने मसलन म्यूज़िक सुना है, म्यूज़िक हराम था, गलत किया मैंने, अब इसकी इस्तग़फ़ार क्या है? वो ये कि रात को इस्तग़फ़ार करे, कल फिर बैठ के सुने, ये तो इस्तग़फ़ार हुई नहीं, तो जहर अपने जिस्म में बाकी है अभी भी, इसको फर्क नहीं पड़ा। न सिर्फ ये कि ना सुने बल्कि इतनी कोई अच्छाई अंजाम दे कि वो जो सुना था उसका असर ख़त्म हो जाए, ये इस्तग़फ़ार। और अब रसूल खुदा का फरमान भी फरमाते हैं, तुम लोग 70 दफ़ा हर रोज़ इस्तग़फ़ार करो, 70 दफ़ा हर रोज़ इस्तग़फ़ार करो। तो कम अज़ कम हमने इसकी तफसीर ये की कि हर रोज़ 70 दफ़ा क्या है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। लेकिन असल में क्या होना चाहिए, हर रोज़ 70 दफ़ा नादिम हो अपने गुनाह के ऊपर, कोई ऐसा काम अंजाम दे जिससे उस गुनाह की जगह अच्छाई नसीब हो जाए, ये सही इस्तग़फ़ार हो। बहर हमारी बात यहाँ से शुरू हुई थी कि हमारे पास मकसद खिलकत में कई अनामीन हैं लेकिन हमें यकीन नहीं है कि लोगों को ये पता है, गरचे लोगों की ज़बान पर हैं, इबादत और तज़किया नफ्स खिलाफत खुदा ये सब ज़बान पर हैं लेकिन यकीन नहीं है कि पता हो। तो उसकी मिसाल में इस्तग़फ़ार अर्ज़ किया कि जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह कहने को हम समझ रहे हैं इस्तग़फ़ार है, नहीं इस्तग़फ़ार नहीं, इस्तग़फ़ार बहुत अमीक है और जितनी उसकी गहराई थी थोड़ी बहुत आपकी खिदमत में अर्ज़ की। अब इन चार अनामीन के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करते हुए कुछ नतायज माह मुबारक रमज़ान के हवाले से हासिल करते हैं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद को। हम क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं खुदा तआला का अपनी इबादतों के ज़रिए से। क़ुर्ब हासिल किस तरह होता है, इस क़ुर्ब को आप कैसे ताबीर करेंगे? क़ुर्ब का मतलब होता है नज़दीक होना। आप खुदा से कैसे नज़दीक हो रहे हैं? खुदा से नज़दीक होंगे तो क्या होगा? खुदा से नज़दीक होंगे तो पता कैसे चलेगा कि नज़दीक हो गए? ये सब कैसे होगा? अगर मेरी उम्र फ़र्ज़ करें 60 साल हो और मुझे नमाज़ें पढ़ते हुए 45 साल हो गए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं करीब हुआ या नहीं हुआ? या हत्ता अगर मगरिब की मैंने नमाज़ पढ़ी है, इशा की नमाज़ पढ़ी है और अब मैं मौजूद हूँ तो मुझे कैसे अंदाज़ा होगा कि मैं करीब हुआ या नहीं हुआ, क़ुर्ब मिला या नहीं मिला, ये कैसे पता चलता है? अच्छा, हमने इन मबाहिस पे मेहनत नहीं की, हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये सीखा है कि उसमें कहना है क़ुर्ब वतन इल्लल्लाह और वो भी ज़्यादातर लोग कहते हैं क़ुर्ब वतन इल्लल्लाह, अल्लाह से दूर। अब लाख पहले तो ये समझाते समझाते बरसों गुजर जाते हैं कि भाई क़ुर्ब वतन इल्लल्लाह नहीं है, क़ुर्ब वतन इल्लल्लाह। इल्लल्लाह का मतलब ये खुदा के सिवा सबसे नज़दीक होना चाहता हूँ, इल्लल्लाह का मतलब ये खुदा की तरफ नज़दीक होना चाहता हूँ। बस सही तरफ उसका है क़ुर्ब वतन इल्लल्लाह। अच्छा, आप क़ुर्ब वतन इल्लल्लाह कह रहे हैं, आपने कैसे क़ुर्ब हासिल किया, इस बात को कैसे जज किया कि क़ुर्ब नसीब हुआ या नहीं हुआ? आप किसी डॉक्टर से इलाज करवाएं और उस बीमारी का इलाज करवाते हुए आपको 40 साल गुजर गए हों और आप हर रोज़ उस बीमारी के इलाज में 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दे रहे हों तो किसी का हक नहीं आपसे पूछे कि भाई तुम्हारा इलाज ख़त्म कब होगा, तुम्हें इलाज से फ़ायदा क्या हुआ है? بس کسی میں صبح کی نماز فجر کے وقت پڑھ رہا ہوں, ظہر عصر پڑھتا ہوں, مغرب عشاء پڑھتا ہوں, ٹھیک ٹھاک نمازیں پڑھ رہا ہوں اور سب کے پیچھے ایک ہی نیت کر رہا ہوں جو کہ واجب ہے, قربتاً الی اللہ. لوگوں کا حق ہے مجھ سے پوچھیں کتنا قرب ملا. اور اگر میں کہوں کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, کہتا بھی ہوں چونکہ واجب ہے, لیکن میں نے کبھی اس بات کو سوچا نہیں کہ قرب ملا یا نہیں ملا, تو اس کا حق ہے مجھ سے کہے کہ کیا تم بے اثر کام کر رہے ہو. یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں 45 سال سے ایک دکان لگا رہا ہوں, آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا میرا کاروبار چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. سامنے والے کا حق ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ بھائی تم کیا کم عقل ہو, تم نے کیوں حساب نہیں کیا کہ تمہارا کاروبار صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا, تمہیں کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. تو کوئی ہم سے کہہ سکتا ہے تم حساب کرو قرب ملا یا نہیں ملا. اچھا میں کیا جواب دوں, قرب ملا یا نہیں ملا, میں کہنے کو کہہ سکتا ہوں اس کے سامنے کہ ہاں قرب ملا ہے اور بہت ملا ہے, تو مجھ سے پوچھے گا تمہارے قرب کی نشانی کیا ہے, تمہارے قرب کی نشانی کیا ہے, تو تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ قرب ملا ہے. اب میں اس کو جواب میں کیا کہوں, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم لوگ پھنس گئے, نہ ہم نے یہاں تک بھی سوچا اور نہ ہم نے اس کا جواب پتا, یہاں تک بھی نہیں سوچا ہے کہ قرب ملا یا نہیں ملا. کیوں, ہم نے نماز کو بھی یہ سمجھا ہے یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک پول ہے, اس کی ساری ایفیشنسی شروع ہوگی مرنے کے بعد, یہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے, اس کی ساری پروڈکٹیوٹی شروع ہوگی مرنے کے بعد. اگر ایسا ہوتا تو خدا نماز کو بھی مرنے کے بعد ہی واجب کرتا ہے, اس کی ایفیشنسی یہاں پر ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ مرنے کے بعد فحشاء منکرات نہیں آتے ہیں, مرنے کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے خدا کے محبت, یہ فحشاء اور منکرات اس دنیا کے اندر ہیں. اس کا مطلب ہے نماز کا پہلا فائدہ جو ہمیں اس آئے کریمہ نے بتایا ہے وہ اس دنیا کے اندر ہے, نہ کہ اس آخرت کے بعد, وہاں تو ہوگا ایک علیحدہ فائدہ, یہاں تو بتایا پہلے ہوا ہے نہیں ہوا. اور پھر ایک اور بات سامنے آتی ہے, جو چیز ابھی فائدہ نہیں دے رہی نہیں معلوم مرنے کے بعد فائدہ دے گی یا نہیں دے گی, جس کا ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس کا پتہ نہیں مرنے کے بعد تو بالکل دنیا ہی تبدیل ہو جائے گی. تو ہمیں یہی پہ سوچ دینا چاہیے. اچھا وہ قرب کیا ہے, میں قصہ مختصر کروں, تزکیہ نفس, قرب, خلافت خدا, یہ سب کیا ہے. خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں دیکھنا پسند کی ہیں, اور یہ صلاحیتیں وہی صلاحیتیں جو خود خدا کے اندر اپنے کمال پہ موجود ہیں. خدا کے اندر کچھ صلاحیتیں کمال کی موجود ہیں, ان صلاحیتوں کو خدا نے ہمارے اندر دیکھنا پسند کیا. جتنا ہم خدا کی صلاحیتوں میں, صفات میں نزدیک ہوتے چلے جائیں گے, یہی قرب خدا ہے. وہ صادق ہے, آپ کو سچا دیکھنا چاہتا ہے, وہ رحیم ہے, آپ کو رحم دل دیکھنا چاہتا ہے, وہ علیم ہے, آپ کو صاحب علم دیکھنا چاہتا ہے, وہ عادل ہے, آپ کے اندر عدل و عدالت دیکھنا چاہتا ہے, وہ منصف ہے, آپ سے انصاف کروانا چاہتا ہے. جتنی خدا کی صفتیں ہیں ان صفتوں میں سے جو مخلوق کے اوپر زیبا ہیں, جو مخلوق پہ سجتی ہیں, وہ آپ کے اور میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے. جس کے اندر یہ صفت جتنی زیادہ ہوگی وہ قرب خدا حاصل کرے گا, اور جو جتنا قرب خدا حاصل کرے گا اتنا ہی خدا کا جانشین ہو جائے گا, اتنا ہی خدا کا جانشین ہو جائے گا. بس آپ عبادت کر رہے ہیں قرب حاصل کرنے کے لیے, اور قرب کے نتیجے میں آپ کو جانشینی ملے گی. اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا, یہ جو صفات میں ہم خدا سے نزدیک ہوں گے یہ کیسے ہوگا؟ اس پروسیس کا نام ہے تزکیہ. یہ کہ ہم اپنی صفات میں خدا کی صفات کے نزدیک ہونا شروع ہو جائیں, اس پروسیس کا نام ہے تزکیہ. یہ ہے تزکیہ نفس. بس ان چاروں اصطلاحات کو نزدیک لے آتے ہیں. آپ اور ہم سے کہا کہ ہم نے تمہیں خلق اس لیے کیا ہے کہ عبادت کرو, اور عبادت اس لیے کرو کہ قرب حاصل کرو, اور قرب حاصل کرو گے تو خلافت ملے گی, جانشینی ملے گی, اور یہ قرب اور خلافت لینے کے لیے تزکیہ نفس کرنا پڑے گا. لہذا سورہ شمس نے کہا جو تزکیہ نفس کرے گا وہ کامیاب ہوگا, اور جو تزکیہ نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا. صحیح, بس چاروں اصطلاحات کی آپ کی خدمت میں تشریح عرض ہوئی. اب مجھے اس کی بنیاد عرض کرنی ہے. ان تمام کاموں کی بنیاد کیا ہے؟ کس کو یہ چیزیں ملتی ہیں اور کس کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی؟ چاہے کچھ بھی کر لیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادت کرتا رہے, قرب کی نیت کرتا رہے اور قرب نہ ملے, جانشینی بھی نہ ملے؟ ہاں ہو سکتا ہے, ہاں ہو سکتا ہے. اور بہت ستاروں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. عبادت بھی کر رہے ہیں, قرب کی نیت بھی کر رہے ہیں, نہ قرب مل رہا ہے نہ جانشینی مل رہی ہے. کیوں؟ چونکہ ان سب کا ایک راستہ ہے. سب کا راستہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. بس ان سب کو جمع کرتے ہیں. جو تزکیہ نفس کرے اس کی عبادت صحیح ہے, اسے قرب بھی ملے گا, اسے جانشینی بھی ملے گی. جو تزکیہ نفس نہیں کرے گا اس کی عبادت صحیح نہیں ہوگی, اسے قرب بھی نہیں ملے گا, اسے جانشینی بھی نہیں ملے گی. لہذا تزکیہ نفس سینٹر پوائنٹ پہ آ گیا, ہر چیز کی بنیاد بن گئی تزکیہ نفس. اچھا, یہ تو ہم نے معنویات میں کہا کہ جو تزکیہ نفس کرے گا اس کی عبادت بھی صحیح ہے, قرب بھی صحیح ہے, جانشینی بھی مل جائے گی. دنیا بنا لے گا کیا؟ نہیں. جو تزکیہ نفس نہیں کرے گا وہ یہاں بھی کچھ نہیں کر پائے گا, بلکہ زمین کے اوپر فساد برپا کرے گا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کو جب ہم زمین کے اوپر طاقت دیتے ہیں تو یہ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں. ایک اور آیت کریمہ فرماتا ہے جب یہ فساد برپا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یُہلِکُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, یہ کھیتی اور نسل دونوں کو برباد کر دیتے ہیں. زمین کو اجاڑ دیتے ہیں اور زمین کو اجاڑنے کے ساتھ ساتھ نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں. اچھا, ممکن ہے کوئی کہے کہ امریکہ نے کھیتی بھی بنائی ہے, نسل بھی خوب ہے. کھیتی کیسے ہے؟ ایگریکلچر بہت زیادہ ہے, نسل بھی اچھی ہے, بالآخر 25-30 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر, تو دونوں چیزیں اچھی ہیں. تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کھیتی کا مطلب کیا ہے. کھیتی وہ کھیتی ہے جو بندوں کے کام آئے, گودام میں لگی ہوئی کھیتی کھیتی نہیں ہے. وہ پڑی رہے گی, گلتی رہے گی, سڑتی رہے گی, ختم ہو جائے گی. بہترین مثال خود امریکہ ہے. گندم پیدا کرتے ہیں, گندم اگاتے ہیں, چونکہ ہر سال مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے زیادہ اگتی ہے تو اس کو سمندر میں ڈالتے ہیں تاکہ مارکیٹ کی پرائس خراب نہ ہو. پچھلے سال سویڈن اور ڈنمارک اور ناروے کی طرف گیا تھا, بہت بڑے بڑے کھیت تھے. مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے, زمین پہ کھیتی ہو اور اناج اگے, لوگوں کے کام آئے. تو وہاں ایک دوست نے احساس کیا کہ میں دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوں. کہنے لگا مولانا صاحب بہت زیادہ خوش مت ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کسی کی کام نہیں آئی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا گورنمنٹ ان کسانوں سے یہ سب خرید کر سمندر میں بہائے گی. یہ ہوگا کیونکہ تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ خراب نہ ہو جائے. اس یہ سب ہوگا. یہ ہے یُہلِکُ الْحَرْثَ, کھیتی اگے گی, کام کسی کے نہیں آئے. وہ نسل, نسل بھی ہلاک کر دیتے ہیں. نسل ہلاک کرتے ہیں کیا مطلب؟ انسان کو انسان نہیں چھوڑتے, خواہشات نفسانیہ کا جانور بنا دیتے ہیں. انسان زیادہ ہو جاتے ہیں, جنگل کی طرح اگاتے ہیں. جیسے درخت برابر میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا ہے برابر والا کون ہے, یہ جنگل بن جاتے ہیں. بہترین حالت میں جنگل ہوتے ہیں, ورنہ اصل میں جنگل کے درندے ہوتے ہیں. اچھے ہوں تو جنگل کے درخت ہوتے ہیں, ورنہ جنگل کے درندے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں. اور مولا کا فرمان نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں, ایک زمانہ آئے گا یکون الناس ذئابا ومن لم یکن ذئبا اکلہ الذئاب. ایک زمانہ آئے گا جب انسان بھیڑیے بن جائیں گے اور جو بھیڑیا نہیں بنے گا اسے دوسرے بھیڑیے کھا جائیں گے. جو بھیڑیا نہیں بنے گا اسے دوسرے بھیڑیے کھا جائیں گے. کیا یہ ہے نسل کی بربادی؟ نسل کی بربادی یہ نہیں ہے کہ آبادی کم ہو جائے گی, نسل کی بربادی یہ ہے کہ بندے ہوں گے لیکن اللہ کے بندے نہیں ہوں گے, یہ خواہشات نفسانیہ کے بندے ہوں گے. اور خدا تعالیٰ کا فرمان ہے نسوا فانساہم انفسہم, انہوں نے خدا کو بھلایا, خدا نے ان کو بھلا دیا. یہ اپنے نفس کو بھلا دیتے ہیں, یہ انسان نہیں رہتے. तो ये सब कुछ होता है, ज़मीन के ऊपर फसाद होता है अगर तज़किया नफ्स ना हो। बस क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इबादत करें, क़ुर्ब की दुआ भी करें और उन्हें क़ुर्ब ना मिले, ना क़ुर्ब मिले ना खिलाफत मिले? हाँ, ये हो सकता है। कब? जब तज़किया नफ्स नहीं करते। अच्छा, तज़किया नफ्स कैसे होता है? ये वो बेस है जो अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। बस चार इस्तलाहात आपकी खिदमत में अर्ज हुई थी, इबादत, क़ुर्ब, खिलाफत और तज़किया नफ्स, इन सब का राबता आपकी खिदमत में अर्ज हो गया। इबादत क़ुर्ब लाती है, क़ुर्ब से खिलाफत मिलती है और इसका रास्ता तज़किया नफ्स से गुजरता है। अब सवाल, एक और सवाल, तज़किया नफ्स कैसे मिलता है? तज़किया नफ्स कैसे मिलता है? क्यों? अगर ये मिल जाए, सब मिल गया, मामले ख़त्म हो गए। अगर तज़किया नफ्स हो गया तो क़ुर्ब मिलेगा, क़ुर्ब मिलेगा खिलाफत मिलेगी, अल्लाह की जानशीनी मिल जाएगी। यही कमाल का खुदा ने मुताल का खल्क करते वक्त फरमाया था, इन्नी जाअलुन फिल अर्दि खलीफा। तज़किया नफ्स कैसे मिलता है? एक लफ्ज़ इसमें सारी दुनिया छुप गई है। काश हमें समझ में आए कि ये एक लफ्ज़ कितना इम्पोर्टेंट है। एक लफ्ज़ क्या है? कंट्रोल, कंट्रोल करें, अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करें, अपने आप को दुनिया के हवाले ना होने दें, अपने आप को शैतान के हवाले ना होने दें। थोड़ा सा इस कंट्रोल और इस कंट्रोल से उबूदियत के तसव्वुर को आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। दुरूद भेजिएगा मुहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मुहम्मद वाले। सेंसिटिव है और ये जो पंखा ऊपर लगा हुआ है इसमें हर सेकंड पर ठक ठक की आवाज़ आती है। चार दिन तक ये माइक्स ठक ठक की आवाज़ को रिसीव करते रहे। उसके बाद हमने देखा कि ये जो नेट वगैरह पर सुनने वाले हैं उनके जुल्म है कि ये बेचारे ठक ठक की आवाज़ सुनते रहें, तो हमने फैसला किया कि इस पंखे को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसको सही करना हमारे बस में नहीं है। ज़्यादा आसान रास्ता था कि ये बंद हो जाए, तो जब ये बंद हुआ तो कुर्बानी हमें देनी पड़ गई। ठीक है, हम तैयार हैं, हमको मसला नहीं है। आधा पौना घंटा ज़्यादा से ज़्यादा पसीना बहेगा और हमारा वेट शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो दोगुना दोगुना फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तज़किया नफ्स कैसे होगा? तज़किया नफ्स कंट्रोल से होगा, कंट्रोल करें। तो कंट्रोल क्या कंट्रोल करें? किस चीज़ के मुकाबले में कंट्रोल करें, क्या कंट्रोल करना है? हाँ, अब फिर यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आती है, जो कंट्रोल करेगा वो बंदा होगा, जो कंट्रोल नहीं करेगा वो ताग़ी होगा। ताग़ी किसे कहते हैं? आसी किसे कहते हैं? आसी कहते हैं नाफरमान, ताग़ी कहते हैं बगावत करने वाला। सही। अच्छा, ये दोनों इस्तलाहात कुरान करीम में है। सही, खुदा ने तआला फरमाता है, वलक़द बअसना फ़िकुल उम्मतिन रसूलन अन इबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत के अंदर रसूल भेजा ताकि अल्लाह की बंदगी करें, तागूत से इज्तनाब करें। और इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तगा। ए मूसा, आप फिरौन की समझाइए, इन्नहु तगा, इसने तुग़यान किया हुआ है, इसने बगावत की भी है। कहीं पर खुदा ने तआला फरमाता है असा, इसने नाफरमानी की है, कहीं पर फरमाता है तगा, इसने बगावत की हुई है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारे सामने दो कवानीन हैं इस दुनिया के अंदर। एक कवानीन का सेट है अल्लाह की तरफ से, अहकाम कवानीन वो सेट है पूरा अल्लाह की तरफ से। किसकी तरफ से? जिसने ये दुनिया बनाई है। जिसने दुनिया बनाई है उसने इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कवानीन का एक सेट दे दिया है। उस कवानीन के सेट को हम शरीयत कहते हैं। सही। उबूदियत क्या है? उबूदियत ये है कि जिसने कानून बनाया है, जिसने दुनिया खल्क की है, उसके कानून को मान लो, उसके बनाए हुए निज़ाम में चलना शुरू कर दो, ये बंदगी है। یہ دنیا خدا نے بنائی ہے, اسی خدا نے کچھ قوانین دیے ہیں, آپ ان قوانین کو لے لیں, ان قوانین کو لے کے چلنا شروع کریں, آپ کے لیے ہر چیز اسموتھ ہے. کیوں؟ جس کی دنیا تھی اس کے قانون تھے, اس قانون پہ آپ نے عمل کیا, اس دنیا میں آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو ملنا چاہیے تھا. اچھا, اب دوسرا ایک اور قوانین کا سیٹ ہے, احکام کا سیٹ ہے, وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ شیطان نے بنایا ہے. شیطان نے احکام کا سیٹ تو بنا دیا ہے, لیکن کیا دنیا شیطان کی ہے؟ نہیں, دنیا شیطان کی نہیں ہے, دنیا تو خود خدا کی ہے. اب یہ کائنات خدا کی ہے, اس نے کچھ قوانین بنائے تھے ہمارے, اور یہ کائنات خدا کی تھی اور شیطان نے بھی کچھ قوانین بنا دیے. اب آپ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ سے کہا جا رہا ہے بندگی کرو تو غیان نہ کرو. آپ بندگی کریں گے تو کیا کریں گے؟ خدا کے بنائے ہوئے قوانین میں چلیں گے, اس دنیا میں جو خود خدا نے بنائی ہے, ہر چیز صحیح ہو جائے گی, دنیا بھی خدا کی, قوانین بھی خدا کے. اب طغیان کیا ہے؟ طغیان یہ ہے کہ دنیا تو خدا نے بنائی ہے اور قوانین کس کے فالو کرے آپ؟ شیطان کے. اس کو خدا کہتا ہے یہ طغیان ہے, یہ طغیان ہے. اچھا, طغیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی بھی صحیح نہیں گزرے گی. جو ہم لوگ ایک جملہ منفی معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں, مثلا کہتے ہیں سمندر میں رہتے ہوئے مگر مچھ سے نہیں لڑ سکتے, یہ نیگیٹو سینس میں کہا جاتا ہے. لیکن اب ایک سادہ سی بات سوچیں, یہ کائنات کس کی بنی ہوئی ہے؟ خدا کی. اور قانون پیروی کریں شیطان کے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز خراب ہو جائے گی. یہلک الارض والناس, ہر چیز خراب ہو جائے گی. کیوں؟ سب خدا نے بنایا, کچھ اور تھا, آپ قوانین کسی اور کے لے کے آ گئے. اگر کوئی یہ کام کرے گا, یہ طغیان ہے, یہ نافرمانی ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہر چیز بگڑنا شروع ہو جائے گی. یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ زمین و آسمان خدا کا ہے. اب سادہ سا کام آپ کیا کریں؟ آپ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی شروع کر دیں, اس کو کہتے ہیں بندگی. اصل تسبیح یہی ہے, اصل تسبیح یہی ہے, سجدہ تسبیح یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں, یہ آپ کی تسبیح ہو جائے گی. آپ خدا تعالیٰ کی قوانین کی پیروی میں ایسے جیسے تیرنا شروع کر دیں گے, اس دنیا کے اندر تیریں گے آپ, بالکل صحیح جائے گا, سب کچھ صحیح ہے. سب کی بنیاد کیا ہے؟ کنٹرول, کنٹرول کر. مثلا آپ کے سامنے ریڈ سگنل آیا, آپ گاڑی بہت اسپیڈ میں چلا رہے ہیں, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ نکل جائیں, کیونکہ ہمیشہ ہم لوگوں کا دل حق سے زیادہ چاہتا ہے. ایک ہماری خواہش ہوتی ہے, ایک ہمارا حق ہوتا ہے, ہمیشہ ہم لوگوں کی خواہش حق سے زیادہ ہوتی ہے. کاش ہم لوگوں کی خواہشات حقوق کے اندر محدود ہو جائیں تو ہم معصوم ہو جائیں گے پھر اپنی اپنی اسٹیٹس کے اندر, لیکن ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. حق اتنا سا ہے, خواہش اتنی بڑی ہے. ایک آپ کا حق ہے, حق کیا ہے؟ آپ کی گاڑی چلے, اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ سب کی گاڑی رکے بس میری گاڑی چلے, یہ آپ کی خواہش ہے, آپ کا حق نہیں ہے. تو اب سگنل ریڈ ہے اور آپ کی خواہش ہے, وہ کیا ہے؟ سب کے ریڈ ہو جائیں میرا گرین ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ اچھا, اب آپ اگر آپ نے اطاعت کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ روکنا پڑے گا, بریک لگانی پڑے گی, اور بریک لگانے کے لیے گاڑی سے پہلے دماغ میں بریک لگانی پڑے گی. اس کو کہتے ہیں کنٹرول, یہ کنٹرول. جو یہ کنٹرول کر گیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جو یہ کنٹرول نہ لا سکا, اچھا ابھی کنٹرول نہیں لائے گا تو یہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ شیطان کے ہاتھ میں. اب وہ چلائے گا. ہم لوگوں کی باڈی عجیب ہے, میں اس پر چند جملے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے. مثلا فرض کرتے ہیں کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہو جاتی ہے, صحیح, اور سگریٹ پینے کی عادت کے نتیجے میں اس کے اندر نہ پینے کے وقت اگر نہ پیے تو ایک طلب ابھرتی ہے. اچھا, وہ طلب اس آدمی کے اندر نہیں ابھرتی جو نہیں پیتا, ابھرتی اس کے اندر ہے جو پیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ अगर फिजिकल डिमांड है तो उस आदमी के अंदर भी होनी चाहिए जो नहीं पीता। मसलन जैसे भूख है, भूख एक फिजिकल डिमांड है, चाहे मैं खाना खाऊं चाहे मैं खाना नहीं खाऊं भूख तो लगेगी, ठीक है। हाँ, अगर खाना ज़्यादा खा लूँगा फिर भूख नहीं लगेगी, चूँकि उस फिजिकल डिमांड को मैं फुलफिल कर चुका हूँगा। अगर सिगरेट पीना नेचुरल डिमांड है तो उसके अंदर क्यों आती है कि जो पीता है उसके अंदर क्यों नहीं आती जो नहीं पीता है? इसका मतलब है ये नेचुरल डिमांड नहीं है। अच्छा, इसके साथ होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इस तरह से है कि एक आदमी को एक आदत होती है। अच्छा, इसका ताल्लुक सिर्फ फिजिकल चीज़ों से नहीं है, बाद अवकात मेंटल बिहेवियर पर भी है। एक आदमी को ताकत दिखाने की आदत हो जाती है तो उसके अंदर इसकी तलब उभरती है कि मैं ताकत दिखाऊँ। बस हमेशा फिजिकल चीज़ें नहीं हैं, ये बाद अवकात मेंटल भी हो सकती हैं, एक बिहेवियरल भी हो सकती हैं। तो होता यह है कि जैसे ही वो सिगरेट पीने की उसके अंदर एक डिमांड आती है, चूँकि उसने सिगरेट पी है, जब उसने पहली दफ़ा सिगरेट पी होगी तो क्या हुआ होगा? यूँ हुआ होगा कि इसने पहली दफ़ा जब सिगरेट पी होगी तो इसकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हुए होंगे जो सिगरेट पीने से मुआफिक होते हैं, उसके साथ अच्छे होते हैं। अच्छा, अब इसने पहली दफ़ा पी, वो केमिकल्स रिलीज हुए, फिर पी, फिर रिलीज हुए, अब वो रिलीज़ होना आदत बन गई है, सही। अब इसने सिगरेट नहीं पी तो क्या होगा? वो केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे, जब वो केमिकल रिलीज हो जाएंगे तो इसकी तलब बढ़ेगी पियो। क्यों? वो केमिकल रिलीज हो रहा है जो पीने पर रिलीज होता था, सही। और ये नहीं पी रहा, अब केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाएगा, रिलीज होगा यहाँ पे इसकी तलब पड़ना शुरू हो जाएगी। इस खातिर उस आदमी के अंदर तलब आती है जो पीता है, जो नहीं पीता उसके अंदर वो तलब नहीं आएगी। अच्छा, अब इसको मुकाबला कैसे करना पड़ेगा? अगर ये यहाँ पी ले तलब आने पर तो वो केमिकल रेगुलर रिलीज होते रहेंगे, इसका मतलब है हमेशा इसने पीनी है, हमेशा इसके अंदर केमिकल आएंगे, हमेशा पिएगा। इसका मुकाबला कैसे करना होगा? एक दफ़ा वो केमिकल्स रिलीज हों और ये ना पिए, तो पहले अगर 10 ग्राम रिलीज हुए थे फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो अब 9.5 होंगे क्योंकि उसने नहीं पी। अगली दफ़ा फिर केमिकल रिलीज होंगे और ये फिर नहीं पिए, तो 9.5 से गिरकर 9 हो जाएगा, सही। अब अगर ये ना पिए तो ये क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, एक वक्त आएगा इसके अंदर केमिकल रिलीज होना बंद हो जाएंगे, आदत खत्म हो जाएगी, सही। अच्छा, अगर ये आदत खत्म ना करे तो क्या होगा? वो रिलीज होते चले जाएंगे, ये उस आदत के अंदर फंसता चला जाएगा। अब बस तोड़ने का तरीकाकार क्या है आदत को? कंट्रोल दिखाए, जब तलब हो उस वक्त ना करें, वाहिद रास्ता ये। और इस प्रोसेस के ऊपर अगर आप तवज्जो दें तो आप अपनी शदीद तरीन गलत आदतों को, जिसको आप सोचते हैं कभी सही नहीं होंगी, सब सही कर सकते हैं। मेन जुमला नींद, मेरे ख्याल में शायद नींद ने जितने शैतान के हामी बनाए हैं कमी किसी चीज़ ने बनाया, शैतान के गुलाम नींद ने बहुत बनाया आजकल के ज़माने में। शिकस्त खाते हैं नींद से, नमाज कज़ा करते हैं, शर्मिंदा होते हैं, फिर तौबा करते हैं, खुदा है क्या हो गया, चाहता था इससे। और अगर दूसरी सूरत में लें, कोई नमाज शब पढ़ना चाहता है, जानता है अच्छी चीज़ है, नहीं पढ़ पाता। अच्छा, नींद पर कंट्रोल एक ख़ास बुढ़ापे के टाइम में आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें वैसे ही नींद नहीं आती। उस मौके पर सब लोग परहेजगार नमाज शब पढ़ने वाले बन जाते हैं, क्यों? उधर वैसे ही नींद नहीं आती, लेटे लेटे मर जाता है आदमी, सोचता रहता है किसी तरीके से आँख तो लगे भाई। ये मुश्किल सारी पेश आती है जवानी में और अधेड़पन में, जब नींद ज़बरदस्त आती है। अगर 6 घंटे की तलब हो तो 8-8 घंटे आती है, 10-10 घंटे आती है, वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़ाया होती हैं कि वो मिसाल के तौर पर नमाज कज़ा करता है नऊज़ुबिल्लाह तआला, या नमाज शब का इरादा करता है पूरा नहीं करता। अच्छा, इस सब का हल क्या है? कुछ दिन कंट्रोल कर ले बस। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो तकरीबन रसूल खुदा की सुन्नत पे अमल करते हुए 2-2.5 घंटे से ज़्यादा इकट्ठा नहीं सोते। नबी की सुन्नत यही थी, 2 घंटे से ज़्यादा इकट्ठा नहीं सोते थे। 2 घंटा सोते थे, खड़े हो जाते थे, थोड़ी सी नमाज पढ़ते थे, फिर दोबारा सो जाते थे, फिर दोबारा खड़े होते थे। बाज़ औक़ात रात में 3-3 दफ़ा ये काम करते थे, थके दो घंटे से ज़्यादा नहीं सोते थे। तो मैंने एक दफ़ा एक डॉक्टर को बताया कि नबी ऐसे करते थे, तो वो लिटरली झूम गया। कहने का मौन साहब कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने का आज मेडिकल साइंसेस में साबित है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव नींद है सिर्फ दो घंटे की है, बाकी टाइम वेस्ट है। यानी बाकी अगर आप तीन घंटे सोएंगे तो आराम आपको ढाई घंटे का मिलेगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान जितना सोएगा उतना ही बेआराम होता चला जाएगा। लिहाजा अगर कोई 10 घंटे सोता है तो मामूलन उठने पर आराम नहीं मिलता, बल्कि बॉडी और थक रही होती है। क्यों? 6 घंटे के बाद अगर कोई सोए इकट्ठा तो कुछ नहीं मिलता, बेआरामी होती है। यानी आप जो आराम की थोड़ी सी भी मिकदार ले सकते हैं वो 6 घंटे के बाद ख़त्म हो चुकी होती है। बेस्ट नींद कौन सी है जिसमें 2 घंटे सोए 2 घंटे आराम हो? 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे की नींद असली नींद है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 3 घंटे सोए तो क्या होगा? 3 घंटे सोएगा, 2.5 घंटे आराम होगा, 15 मिनट वेस्ट होगा। 4 घंटे सोएगा तो क्या होगा? उसमें मसलन कह रहा हूँ 3 घंटे आराम होगा, 1 घंटा वेस्ट होगा। 6 घंटे पर अगर आ गया अब कोई आराम नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ये होगा कंट्रोल कर लें, कंट्रोल कर लें कुछ दिनों तक अपने ऊपर कंट्रोल कर लें कि मैंने इस काम को इस तरह करना है, खुद ब खुद आपकी आदत सही होती चली जाएगी। और आप इस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी की सारी आदतों को सही कर सकते हैं। अब आखिरी जुमला, ताकि इस पूरी बहस से लिंक बन जाए, माह रमज़ान क्या सिखाता है? कंट्रोल। माह रमज़ान मकसद हयात को पूरा करने के लिए है। मकसद हयात इबादत है, इबादत पे कुर्ब होता है, कुर्ब पे खिलाफत मिलती है। इन सब को हासिल करने के लिए तज़किया करना होता है, और तज़किया हासिल होता है कंट्रोल से, और माह रमज़ान कंट्रोल सिखाता है। माह रमज़ान मकसद हयात को पूरा करता है। आप इतनी बड़ी नेमत से खुदा ना करे महरूम ना रह जाएं अगर आप माह रमज़ान से फ़ायदा ना उठाएं। माह रमज़ान से फ़ायदा उठाएं, इसमें आपको कंट्रोल मिल रहा है। अपने कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। जो चीज़ें नहीं छोड़ पा रहे थे वो अब आप छोड़ना शुरू कर दें। आपको दो बेनिफिट मिले हैं माह मुबारक के रमज़ान में। दोनों को अर्ज करूँ बहुत जल्दी में, चूँकि वक्त हमारा ख़त्म होता जा रहा है। दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद को। आपको दो फायदे मिले हैं माह मुबारक के रमज़ान में। पहला फ़ायदा, आपने भूख और प्यास पर कंट्रोल किया हुआ है, आपका कंट्रोल का लेवल बढ़ा हुआ है। तो अगर इन दो फिनोमिनाज में जो बहुत नेचुरल हैं, आपका कंट्रोल बढ़ा हुआ है, बाकी चीज़ों पे कंट्रोल करना आसान है क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। ये दो एब्सोल्युटली नेचुरल हैं, भूख और प्यास, इन पर आपने कंट्रोल किया हुआ है, तो आर्टिफिशियल पर कंट्रोल करना आपको आसान है। एक और बात भी है, ये फ़ायदा कुछ लोगों को मिलेगा, वो क्या है? आपका शिकम काफ़ी वक्त खाली रहेगा। बोलता मैंने बताया ये काफ़ी लोगों को नहीं मिलेगा, वो जो सुबह को स्टोर और शाम को इंतकाम लेंगे। सुबह को स्टोर करेंगे, शाम को इंतकाम लेंगे, उनका पेट कहाँ खाली रहेगा? वो खाली नहीं रहेगा। ये उसका पेट खाली रहेगा जो सुबह को ज़रा हल्का रहे, शाम को थोड़ा हल्का रहे, उसका पेट खाली। अच्छा आप कहेंगे पेट खाली रहा तो क्या होगा? अजीब बात अर्ज करूँ, बात अवत हम लोग रिवायात के अंदर कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, चूँकि समझ में नहीं आती तावील कर देते हैं, तावील कर देते हैं। आप तो ज़रा कम करते हैं काम, चूँकि आप रिवायत पढ़ते नहीं हैं। हम लोगों को ये काम बहुत करना पड़ता है, चूँकि हम मालूम तो समझ में नहीं आई ये बात। हमारे पास लिखा है रिवायात के अंदर, तयशुदा रिवायात के अंदर, खती रिवायात के अंदर, कि अपने शिकम को खाली रखो, इससे तुम्हें इल्म मिलेगा। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ मेडिकल साइंसेज में। मेरा मैदा एक ज़र्फ़ है, एक रखने की जगह है। रिवायत क्या कह रही है? इस मैदे के बॉक्स में कुछ स्पेस खाली छोड़ दो, तुम्हें इल्म मिलेगा। ये हमें समझ में नहीं आता कि भाई इस फिज़िकल बॉक्स को थोड़ा सा खाली रखने से इल्म कैसे मिलेगा, ये समझ में नहीं आता। जबकि इल्म फिज़िकल और मटीरियल नहीं है, ये हम सबको पता है। इल्म नॉन मटीरियल है, मेटाफिज़िकल एग्जिस्टेंस है। इसका क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक बहुत मेहनत करूँ तो शायद अर्ज़ कर पाऊँ, लेकिन फ़िलहाल वो मेहनत नहीं कर सकता। लिहाजा अभी मैं कहूँगा फ़र्ज़ करें नहीं समझ में आया, कलाम के सच्चे होने की मैं गवाही देता हूँ आपकी खिदमत, ये कलाम सच्चा है। और इसका लुबिलुबाब क्या है, अपने शिकम को खाली रखो तुम्हें इल्म मिलेगा, मानवियत मिलेगी, इल्म मिलेगा। ये माह रमज़ान की दूसरी सपोर्ट है बाज लोगों के लिए, आप बहुत अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं, फ़ायदा उठाएं। अल्लाह की रहमतों नेमतों उलूम के दरवाज़े आप पर खुल सकते हैं इस माह रमज़ान, आप माह रमज़ान की मंत्र को हासिल कर लीजिए, इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दीजिए, खुद ब खुद कुछ चीज़ें आश्कार होना शुरू हो जाएंगी। और आखिरी इस सिलसिले में अर्ज़ है, कल इसके ऊपर थोड़ी सी और आरज़ पेश करूँगा, अपने खुलूस को बेहतर से बेहतर बनाएं, पुरखलूस हो जाएंगे। जितना आपका खुलूस बढ़ेगा रिवायत के मुताबिक, कतई रिवायत के मुताबिक, तयशुदा मुस्तनद रिवायत के मुताबिक, जो बंदा 40 दिन तक पुरखलूस रहेगा खुदा उसकी ज़बान पर इल्म हिकमत के चश्मे जारी कर देगा। तयशुदा रिवायत है ये, क्या सुन्नी और क्या शिया सब मानते हैं कि रिवायत सही रिवायत है। अगर उलमा 40 रिवायत जमा करते हैं हिफ्ज़ करने के लिए, मामूलन ये रिवायत पहली होती है, मामूलन ये पहली होती है, सबको मालूम है ये सही रिवायत है। 40 दिन तक बंदा अपने आप को मुखलिस कर ले, खुदा एक इल्म हिकमत के चश्मे उसकी ज़बान पर जारी कर देगा। आप और मैं माह मुबारक रमज़ान से ये सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, लेकिन सब फ़ायदे उसके लिए जो इरादा करें, आप इरादा करें, खुदा आपको और मैं कहीं पहुँचाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर मुश्किल एहसास कर रहे हैं तो क्या करें, तवस्सुल करें, पहले बैच से तवस्सुल करें, वक्त के इमाम को याद करें। खुदा मुख्तार ने उनके नाम के जिक्र में बरकत रखी है, नहीं मालूम कैसा है, अहले बैत अथार के असामी में बरकत है, नहीं मालूम क्यों ऐसा है, ये भी समझ में नहीं आती बात। नाम ग्रामी में बरकत है, नाम में बरकत है, वक्त के इमाम का नाम दोहराया जाए इसमें बरकत है। बखुदा अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, ये जो हम चंद मिनट जबरन सही इमाम का नाम बीच में लाते हैं इसमें बरकत है, पता नहीं खुदा का निज़ाम कैसा है। वो इनके नाम का जिक्र चाहता है, इनकी तालीमात का जिक्र वो तो खैर है ही, किरदार का जिक्र वो तो है ही, ये भी चाहता है कि उनका नाम जिक्र हो, खुदा अनुतार ऐसे चाहता है। जैसा हमारे पास रिवायत मौजूद है, अजीब नफीस रिवायत मौजूद है, एक रावी छठे इमाम के पास हाजिर हुआ, इमाम ने पूछा बच्ची की विलादत हुई है, मौलाना फरमान मुबारक, पूछा तुमने नाम क्या रखा है, कह रहा था मैंने बच्ची का नाम फातिमा रखा है। रावी कहता है जैसे ही मैंने कहा कि बच्ची का नाम ये रखा है, इमाम ने सर झुका दिया, इमाम ने सर झुकाया, कहता है इमाम सर झुकाए रहे, मैंने थोड़ी देर में देखा कि उन्होंने गिरिया किया, उन्होंने गिरिया किया, कहने मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं तुमने बच्ची का नाम फातिमा रखा है, इसने कहा जी मौला ऐसा ही है। फरमाया अब इस बच्ची को थप्पड़ ना मारना, अच्छी रिवायत, जिस बच्ची का नाम फातिमा रखो उस बच्ची को थप्पड़ ना मारना। नहीं मालूम कौन कौन से सितम अहले बैत अथार पर हो, और जो सितम बीवी पर टूटे हैं उसको मैं और हम हिसाब नहीं कर पाते। रिवायत के दो जुमले हमारे पास हैं जो हम लोगों के लिए बहुत हैं, एक जुमला बीवी का जुमला है जिसमें उन्होंने फरमाया मुझ पर वो जुल्म टूटे जो दिनों पर टूटते तो सिया रात हो जाती, पहाड़ों पर टूटते तो चिकना चूर हो जाता। ये एक जुमला बीबी का है, एक जुमला एक रावी ने लिखा है, मेरे जैसा आदमी कभी नहीं समझ पाता इस जुमले का मतलब क्या है, लेकिन मुस्तनद उलमा ये जुमला दोहराते हैं। कहता है बीबी खुतबा देने गई तो जवान थी, वापस आई तो बूढ़ी थी।
واقعی سمجھ میں نہیں آتا، مظالم کی انتہا ہوئی ہے. اب کچھ مظالم ایسے ہوئے ہیں جو میں اور آپ احتراماً بیان نہیں کر سکتے ہیں. کیا میں اور آپ کام چاہتے ہیں کہ مثلا میں کیوں کیسے کہہ سکوں ان جملوں کو؟ لیکن بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے نہیں کہا تو ہماری نسلیں نہیں پڑھیں گی، اور نہیں پڑھیں گی تو انہیں نہیں پتہ چلے گا، اور ہماری بیوی کے اوپر ہونے والے ظلم سب کو پتہ ہونے چاہیے. اللہ بہاؤدینی نے ایک جملہ پڑھا، میں ان کی اجازت سے جب ان سے اجازت لی میں نے کہ جملہ بیان کر دیا کروں، فرمایا ضرور بیان کر دیا کرو. فرماتے ہیں جب اس لعین نے بی بی کے رخسار پہ تھپڑ مارا، ایک طرف سے اس نے تھپڑ مارا، دوسری طرف سے چہرہ دیوار سے ٹکرا رہا تھا. جب بی بی کو باہر نکالا، امیر المومنین کو باہر لے جانے لگے، بی بی نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا میں اپنے ہوتے ہوئے ابو الحسن کو نہیں جانے دوں گی. اتنے کوڑے مارے کہ بی بی کا بازو گرم ہوا. مل کر دعا کرتے پروردگار جنہوں نے بی بی پر ہاتھ اٹھایا ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کو جہنم کے بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے اس ظلم کا انجام دیا ان کی نسلوں کو برباد فرما، جو اس ظلم کو سنے اور اس پر خاموش رہے اعتراض نہ کرے اس کی نسل کو برباد فرما. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، ان کی اولاد کی محبت نصیب فرما، ان کی اولاد کے جانساروں میں قرار فرما، ان کی اولاد کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ہماری اولادوں کو ان کی اولادوں کے تابے داروں میں قرار فرما، ہماری اولادوں کو ان کی اولادوں کے جانساروں میں قرار فرما، ہماری اور ہماری اولاد کی زندگی ان کی اولاد طاہرہ پہ قربان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام جلنا تعالى فرجك.
تحفظ سے 15 روزہ بجانے سے اعضاء کا یہ سلسلہ جو 6 رمضان کو یہاں جامع مسجد میں شروع ہوا ہے انشاءاللہ 20 رمضان تک جاری رہے گا. 6 تا 14 رمضان سید علی مرتضیٰ زینی صاحب مجالس اعضاء سے خطاب فرما رہے ہیں. بروز بدھ 14 رمضان کو مولانا سید علی مرتضیٰ زینی صاحب کے اس سلسلے کی مجالس کی یہاں آخری مجلس ہوگی, اور پھر 15 رمضان بروز جمعرات سے 102ویں مول ٹاؤن میں مولانا سید حسن ظفر نقوی صاحب مجالس اعضاء سے خطاب فرمائیں گے. اور ان تمام مجالس ٹھیک 8:30 بجے شروع ہوتی ہیں. مومنین, الحمدللہ آپ کے بھرپور تعاون سے باب الرجل فاؤنڈیشن ایک خطیر رقم اب تک سیلاب سے متاثرہ بھائی بہنوں کو پہنچانے میں کامیاب رہی ہے, لیکن نقصان کی فہرست بہت طویل ہے. ابھی کافی عرصے تک ہمیں اس سلسلے میں پرخلوص کوششیں جاری رکھنے کا عزم کرنا ہوگا تاکہ محروم اور بے گھر مومنین کے نقصان کی کسی حد تک تلافی ہو سکے. آج بھی مجلس کے اختتام پر ہمارے کارکن دونوں اطراف میں آپ سے ملنے والی امداد کے منتظر ہوں گے. براہ کرم دل کو کرتا ہوں. شکریہ.